ओम शांति। Bring your attention to the center of the forehead and see yourself इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा, देखना है उसको, सिर्फ सोचना नहीं है, देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी को देखना है, मैं शक्तिशाली आत्मा, अपने जीवन को देखे, जस्ट रीबाइंड योर लाइफ। पिछले 30, 40, 50, 60 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है अपने अपने जीवन में। जस्ट रिवाइंड एंड जस्ट सी, चेक करें क्या सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा हमें चाहिए था, क्या सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा हमने डिसाइड किया था। अपना जीवन देखें, अपनों का जीवन देखें, कभी किसी पर बहुत विश्वास किया था फिर भी धोखा मिला, और कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया था फिर भी बहुत सहयोग मिला। चेक करें अपनी लाइफ में, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की थी फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, और कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया फिर भी बहुत कुछ मिला। किसी ने शरीर का बहुत ध्यान रखा फिर भी बीमारी आ गई, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं रखा फिर भी शरीर स्वस्थ चल रहा है। ये सब कैसे डिसाइड होता है? और अब अपनी जीवन में चेक करें, क्या अपने भाग्य में क्या कोई ऐसी बात है जिसको चेंज करना चाहते हैं? Is there anything you want to change in your destiny? भाग्य को चेक करें। किस किस को लगता है कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसको नोट करके रखना क्या चेंज करना चाहते हैं। कि हर एक का अलग होगा ना, लेकिन नोट करके रखेंगे, विधि सीखेंगे और बहुत इजीली चेंज करेंगे। हमेशा याद रखना, स्पिरिचुअलिटी आपकी जीवन की प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करेगी। आजकल लोगों को ये अच्छा लगता है, हम कहीं जाएं, हमारी प्रॉब्लम सुनाएं और सामने वाला कहे चलो आज से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अच्छा लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अच्छा तो लगता ही है। लेकिन फिर हर बार हर प्रॉब्लम के साथ किसके पास जाना पड़ेगा? हाँ, किसके पास जाना पड़ेगा? जिसने वो वाली ठीक की थी उसके पास जाना पड़ेगा। राजयोग आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगा। राजयोग किसको ठीक करेगा? राजयोग किसको ठीक करेगा? राजयोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को ठीक कर देगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को ठीक कर देगा, और राजयोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति उसको दे देगा। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक भाई आया, उसका बिजनेस में बहुत लॉसेस हो गए थे, बहुत ज्यादा कोविड के टाइम पर। तो हमने कहा पाइए मेडिटेशन सीखिए। तो जब आया तो कहा यहां आने से मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा क्या? आई सेड नो। ही सेड फिर क्या फायदा है? तो मैं कहा यहां आने से बिजनेस तो नहीं ठीक हो सकता, यहां से आने से ये हो सकता है आप पावरफुल हो जाएं, और अगर आप पावरफुल हो गए तो आप अपने बिजनेस को पहले से भी ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन यहां कोई मैजिक बाहर नहीं होगा, यहां का मैजिक कहां होना है? कहां होना है? कौन सा वाला चाहिए आपको, बाहर वाला मैजिक क्या यहां वाला मैजिक? यहां वाला, क्योंकि एक बार ये वाला मैजिक सीख लिया तो सारी पावर किसके पास आ जाती है? अपने पास आ जाती है। तो हम अपनी जीवन में आई हुई कोई भी बात को ठीक कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अपनों के जीवन में आई हुई बात को भी उस पावर से ठीक कर सकते हैं, उनको पावर दे सकते हैं उसको ठीक करने की। सो राजयोग हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं करता है। राजयोग हमें क्या बनाता है? सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट सशक्त करता है, खुद को पावरफुल बनाना है। तो जब भी जीवन में कोई बात आती है, हम देखते हैं कि किस पर उंगली रखें। कल हमने देखा छोटी छोटी बातों के लिए हम किस पर उंगली रखते हैं? इधर इधर इधर। और जब थोड़ी सी बड़ी बात आती है तो किस पर उंगली रखते हैं? उधर। क्योंकि बचपन से सीखा था ना कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो किसने लिखा, है ना? सो बचपन से हमने सीखा एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल। पत्ता पत्ता भी किसकी मर्जी से हिलता है? परमात्मा की मर्जी से हिलता है। सब कुछ ईश्वर की भावी। कौन कौन अग्री करता है एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, राइट राइट राइट। अब एक सेकंड के लिए जो सुना है उसको निकाल के साइड पर रखते हैं और चेक करते हैं। अगर सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है तो हर एक का भाग्य कैसा होना चाहिए? एक वर्ड में बता, हर एक का, सिर्फ एक का नहीं। क्योंकि भगवान अगर भाग्य लिख रहा है तो एक दो का नहीं लिखेगा, कुछ का नहीं लिखेगा। अगर लिख रहा है तो सबका, नहीं लिख रहा है तो किसी का नहीं। गॉड कैन नेवर बी बायस्ड। जैसे एक पेरेंट बायस्ड नहीं होता दोनों बच्चों के बीच, परमात्मा पिता है, परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो बायस्ड नहीं हो सकता। कुछ बच्चों का लिखेगा, कुछ का नहीं, कुछ का अच्छा लिखेगा, कुछ का थोड़ा एवरेज और कुछ का, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो भगवान अगर भाग्य लिख रहा हो तो कैसा भाग्य होगा? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट में क्या नहीं आएगा? हॉस्पिटल होंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट भाग्य में? हॉस्पिटल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हॉस्पिटल नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे। पुलिस स्टेशन होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट भाग्य में? नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन नहीं होगा, जेल नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, कितना कुछ नहीं होगा। होगा क्या फिर? क्या होगा? भगवान अगर भाग्य लिख रहा है तो सबका भाग्य कैसा होगा? परफेक्ट होगा। एक वर्ड में बोलो, परमात्मा अगर मेरा भाग्य लिख रहा है तो कैसा होगा? परफेक्ट होगा। और परमात्मा अगर भाग्य लिख रहा है तो सबका भाग्य इक्वल होगा। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का अच्छा, किसी का मुश्किल, ऐसा नहीं हो सकता। आज आप देखो तो कितनी इनइक्वालिटी है डेस्टिनी के अंदर। कोई पैदा होता है उसके पास 10 लोगों का परिवार है, कोई पैदा होता है, पैदा होते ही पेरेंट्स नहीं है, कितना अनइक्वल है। कोई पैदा होता है 100 वर्ष तक तंदुरुस्त रहता है, कोई पैदा होता है बीमारी अपने साथ ही लेकर आ जाता है, कितना अनइक्वल है। कोई पैदा होता है तो उसके परिवार के पास अपना प्राइवेट प्लेन है, और कोई पैदा होता है तो खाने के लिए नहीं है, कितनी इनइक्वालिटी है। ये भगवान इतनी पार्शियलिटी कैसे करता है? कर सकता है इतनी पर्सनैलिटी? नहीं। तो परमात्मा भाग्य लिखेगा तो कैसा होगा? तो अब अपनी डायरी में लिख लो, अगर परमात्मा भाग्य लिखेगा तो दो क्राइटेरिया हमेशा पता होना चाहिए, ताकि कोई भी आपको कहेगा कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भगवान आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तो भगवान डेस्टिनी अगर लिखे तो दो वर्ड्स अप्लाई होंगे, परफेक्ट एंड इक्वल, सबका भाग्य एक जैसा और हमेशा परफेक्ट। एक दूसरा बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुना है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम आएगा, ये भी सुना है। कौन कौन इसको मानता है? अच्छा, आपने रियलाइज किया, आपने दोनों में हाथ उठाया। इसका मतलब हमने कहीं से सुना कि भगवान भाग्य लिखता है तो हमने कहा यस, फिर हमने सुना हमारा भाग्य कर्मों से लिखा जाता है उसके लिए भी हमने कहा यस। दोनों तो नहीं हो सकते ना, मेरे कर्म मेरे, परमात्मा उधर, या तो वहां से मेरा भाग्य लिखा जा रहा है या कहां से लिखा जा रहा है, यहां से। इट्स ईदर देयर और हियर, इट कैन बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता। यहां से अगर भाग्य लिखा जा रहा है तो हम सबके भाग्य एक जैसे नहीं है, हम सबके कर्म एक जैसे नहीं है। कर्म एक जैसे नहीं होंगे तो भाग्य भी एक जैसा नहीं होगा। हमारे बहुत सारे कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलती, तो इसलिए हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं है। तो गॉड अगर डेस्टिनी लिखे परफेक्ट एंड इक्वल, कर्म से अगर डेस्टिनी हो तो इक्वल नहीं, क्योंकि कर्म इक्वल नहीं, और कंप्लीट परफेक्ट नहीं क्योंकि कर्म परफेक्ट नहीं। तो अब कौन से वाले को पकड़ना है और कौन से को छोड़ना है, कौन सा बिलीफ सिस्टम पकड़ना है? हमेशा याद रखना, जो भी आपके साथ कोई शेयर करता है वो एक बिलीफ सिस्टम है, उसको सिर्फ एक बिलीफ की तरह लेना, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, और जब आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, तब आप उसको सत्य कहना। एज इट इज किसी की कही हुई बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। वो उनका सत्य हो सकता है लेकिन वो मेरा सत्य कब बनेगा? जब मैंने उसको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है। क्या होता है, लोग बस सुनते हैं और उसको मान लेते हैं, फिर दुनिया कहती है ये सब ब्लाइंड फेथ है, ऐसे ही मानते रहते हैं कोई भी बात को। तो वो क्यों हमने कहा कि ब्लाइंड फेथ है? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किए बिना उसको स्वीकार किया। तो किसी ने कुछ कहा, हमने उसको स्वीकार किया, दूसरे ने ऑपोजिट कहा, हमने उसको भी स्वीकार किया, बिकॉज हम अपना रोल नहीं ले रहे हैं बीच में। हम कह रहे हैं दे सेड सो, दे सेड सो इज फाइन, बट उनका कहने के पीछे क्या क्या भाव था, क्या मीनिंग था, किस तरह से एक्सप्लेन किया, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं। तो इसलिए ये एक बिलीफ सिस्टम है। ये ट्रुथ कब बनेगा? ट्रुथ कब बनेगा? जब आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो ये ट्रुथ बनेगा। ठीक है ना? कल हमने क्या देखा, लोएस्ट एनर्जी संस्कार कौन से और हाईएस्ट एनर्जी संस्कार कौन से हैं। आपने दोनों कॉलम्स भी बना दिए। अब लेकिन जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे वापस जाने के बाद, कि कोई बात आएगी, आप उसको प्यार से क्रॉस कर रहे हैं, आपको दिखेगा आपकी शक्ति क्या हुई, बढ़ी। आप रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी शक्ति घटी। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। उस दो कॉलम्स को भी ऐसे नहीं स्वीकार करना है। फिर हमने दूसरी चीज कल क्या देखी, अगर कोई कुछ करता भी है गलत या कोई कमजोर भी है घर पे, हम पावरफुल रहकर उसको क्या देंगे, शक्ति देंगे। नाउ यू हैव टू गो बैक एंड एक्सपेरिमेंट दिस। ऐसे ही नहीं मानना उस बात को, एक्सपेरिमेंट करना। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलती है, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो आपका ज्ञान बन जाता है। भगवान आकर हमें ज्ञान देते हैं लेकिन फिर भगवान कहते हैं अब इस ज्ञान को अपना बनाओ, अपना बनाओ। अपना कब बनता है? जब हम उस चीज को यूज करते हैं तो वो हमारा बन जाता है। तो अब परमात्मा भाग्य लिख रहा है या मेरे कर्म भाग्य लिख रहे हैं? अब फिर से उंगली कहाँ जाएगी? आपको बोला था ना, तीन दिन में यहीं जाने वाली है सिर्फ, और कहीं नहीं जाने वाली है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल पावर टू सॉल्व एंड फेस एवरी सिचुएशन। अब इस लाइन को हमने बचपन से सुना है लेकिन हम सारा दिन में इसको यूज नहीं करते। जैसा कर्म वैसा परिणाम। परिणाम मीन्स कॉन्सिक्वेंस। ऐसा नहीं कि हमें कोई सजा मिल रही है, दैट वर्ड इज नॉट राइट, क्योंकि सजा कोई ऊपर से बैठकर नहीं दे रहा है. इट इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन. तो कर्म होता क्या है? कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, कर्म सबसे पहले है जो हम सोचते हैं, फिर सेकंड कर्म है जो हम बोलते हैं, फिर थर्ड कर्म है जो हम करते हैं. सो व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, व्हाट आई फील, मेरी इंटेंशन क्या है, वो भी कर्म है. तो कर्म एनी एनर्जी जो मैंने क्रिएट की है. तो कई बार हम किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम उनके लिए परफेक्ट सोचते हैं. हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता कि किसी के लिए कुछ और मिलावट वाला सोचो और बोलने में बोलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. हो सकता है ऐसे? यस. तो उसको कौन से कर्म में डालेंगे? क्योंकि हर रोज कर्मों की बैलेंस शीट में एंट्री हो रही है. कल हमने देखा था, आत्मा जब शरीर छोड़ेगी क्या जाएगा साथ में? कर्म एंड संस्कार. तो हर क्षण एक कर्म हो रहा है, क्योंकि सोचना तो हम बंद नहीं करते. तो एवरी थॉट इज गेटिंग एंटर्ड इन दैट बैलेंस शीट. और जो मुझ आत्मा का इस शरीर के अंदर लास्ट क्षण होगा, आखिरी क्षण, वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी. तो वो मेरी हो गई 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस शीट. लास्ट क्षण तक जो सोचना है सोच लो. इसलिए सबको क्या सिखाया जाता है, पता है जाने वाले हैं तो किसको याद करो? अब पहले नहीं किया, जाते जाते क्यों करना है? जाते जाते तो इन सब से बातें करनी चाहिए ना, जिनको छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ बैठना चाहिए. नहीं, जाते जाते किसको याद करो? भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, पाठ करो, ताकि आप लास्ट रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं आत्मा के ऊपर? प्योरेस्ट, हाईएस्ट. और जाते जाते क्या करना चाहिए? सपोज आपको पता चले कितने बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, आज 5 बजे हम जाने वाले हैं. ट्रेन प्लेन में नहीं, आज शाम को 5 बजे हम जाने वाले हैं. कहां जाने वाले हैं? क्या करेंगे 5-6 घंटे के अंदर? क्या करेंगे 5-6 घंटे के अंदर? क्षमा करेंगे. ओ, और क्या करेंगे जाने से पहले? हैं जी, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे भी. कभी हमने सोचा अभी जाते जाते क्या क्षमा करना, इतने साल तो किया नहीं, अब तो फिर से मिलने नहीं वाले, वो अभी क्यों क्षमा करना है जाने से पहले? सूक्ष्म में हर आत्मा को ये पता है कि जाने से पहले मुझे अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करना चाहिए? कार्मिक अकाउंट को सेटल करना चाहिए. लेकिन हमें तो पता नहीं है हम कब जाएंगे. क्या हर एक घंटे पहले पता चलता है? और 6 घंटे पहले पता चल जाए तो उस फ्रेम में होते हैं, उस फ्रेम ऑफ माइंड में है ये सब करने के लिए? नहीं. तो फिर कब करना चाहिए ये? इसीलिए जीवन ऐसा जीना कि अभी शरीर छूट गया तो भी सारे कार्मिक अकाउंट सेटल्ड है, कोई लेन देन पेंडिंग नहीं. एक होती है पैसों की लेन देन पेंडिंग, बट एक होती है कर्मों की एंटेंगलमेंट. जीवन हमेशा ऐसे जीना कि कुछ भी उलझा हुआ नहीं है. इसीलिए कल आपसे शेयर किया कि कम से कम रात को सोने से पहले तो जरूर क्षमा करना. कि दिन में उस टाइम नहीं भी किया, कम से कम रात को सोने से पहले क्षमा करना, क्षमा मांगना, शुक्राना करना. हर चीज जो आप शरीर छोड़ने से पहले करना चाहेंगे वो कम से कम हर रोज दिन के एंड पे तो कर लेना चाहिए. भगवान को याद करना, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना. इस साल में तो हमने कितनी आत्माओं की जर्नी देखी कि रात को सोए और नींद में ही शरीर छोड़ दिया, है ना? आत्मा को पता भी नहीं चलता है. जो ऐसे वाले शरीर छोड़ना होता है ना, पता ही नहीं चलता आत्मा को. दे डू नॉट कम टू नो, पता नहीं चलता. वो नींद में ही थे, वो डीप स्लीप में ही कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, लेकिन बहुत पावरफुल है ऐसे आराम से चले जाना, कोई सफरिंग नहीं हुई, लेकिन वो क्षमा करना वगैरह का टाइम नहीं मिला बीच में। सोचो अगर सपोज रात को सोने से पहले आप अपने स्पाउस से झगड़ा वगड़ा करके सो गए, सपोज आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा किया और सो गए, और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ा, चलो आपने नहीं छोड़ा उन्होंने छोड़ दिया, तो सो ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर। ऐसे लगता है ना, बट ये तो कभी भी हो सकता है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ सकती हूं, कोई और आत्मा शरीर छोड़ सकती है। अगर मैं या वो छोड़ दिया कॉस्ट्यूम बिना उसको सेटल किए, तो वो कार्मिक अकाउंट तो साथ में और आगे जाएगा ना। इसीलिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो है उसी क्षण क्षमा करो और पूरा करो, क्षमा करो, दुआ दो और उस इंटेंगलमेंट को क्या करो, खत्म करो। तो एक ही चीज मेरे साथ जाएगी, मेरे कर्म और संस्कार। तो जीवन ऐसा जीना है कि अभी अगर शरीर छोड़े तो कोई हिसाब किताब पेंडिंग नहीं है, कोई लेन देन पेंडिंग नहीं है, ठीक है ये बात। और लेन देन कहां चेक करना है, सिर्फ वर्ड्स एंड बिहेवियर नहीं। हम किसी से मिलते हैं, उनसे कहते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप आना अगले हफ्ते हमारे घर, आप खाना भी हमारे साथ ही खाना, और फिर अगले हफ्ते वो फोन कर देते हैं या बिना फोन करे ही आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं आप कैसे आज इधर, तो वो कहते हैं आपने कहा था आना, तो हम अंदर सोचते एक बार बोला आ ही गई है, ऐसे मैंने तो ऐसे ही बोला था। और फिर वो बैठ भी जाते खाना भी खाने, क्योंकि हमने उस दिन बोला था खाना भी खाना हमारे साथ। सो इंटेंशन, थॉट, वर्ड, बिहेवियर, ये सब अलाइंड होना चाहिए। इसको कहते हैं सच्चाई, सफाई, अंदर बाहर साफ। जो बात बोलने लायक नहीं है वो सोचने लायक भी नहीं है। स्पष्ट बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट करनी चाहिए। सोच अलग अलग, बहुत इंटेंगलमेंट होता है उसके अंदर, बहुत इंटेंगलमेंट होता है। तो इसीलिए कर्म बोल पर नहीं, सोच से बनेगा। तो अगर मैं किसी के लिए सोचती हूं ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, 100 थॉट्स में क्रिएट कर देती हूं। बोल में मैं 2 लाइन ही बोलती हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने आप को टिक करती हूं, मैंने उनसे आज बहुत अच्छे से बात की, मैंने 2 पॉजिटिव लाइन्स बोली और मैंने 100 नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, तो मेरा बैलेंस शीट में क्या हुआ टोटल, -98। ये याद रखना है, ताकि हम कर्मों की चेकिंग थोड़ा डीपली करेंगे, ताकि जीवन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसके लिए मैं आत्मा कहूं मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए हम कल से देख रहे हैं राजयोग हमारी सोच को बदलता है, सोच बदल गई भाग्य बदल जाएगा। अब एक बॉल को ऐसा पकड़े अपने हाथ में, ये हमारा कर्म है, अभी हम बाहर फेंकने वाले हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया बॉल फेंकने से पहले दूसरे कैसे फेंक रहे हैं वो नहीं देखना। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर कभी कर्म नहीं करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में सही कर्म करने वाले लोग कम होते जाएंगे। और अगर हमने सिर्फ लोगों को कॉपी करके कर्म कर दिया तो उनको देखकर हमारा कर्म भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया लोगों की तरफ नहीं देखना, दूसरा सोच समझ के बॉल फेंकना, याद रखते हुए कि जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड पर आप अभी फेंकेंगे वो बॉल इस दीवार को हिट करेगी और वो बॉल आपके पास वापस आएगी। जब आप बॉल फेंक रहे हैं वो आपका कर्म है, जो बॉल वापस आ रही है वो उसका परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, वो डेस्टिनी है। चलो पकड़ो एक बार, एकदम ध्यान से, धीरे से समझ के कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये कर्म है, एनर्जी दैट आई थ्रो आउट। करें, ये करना जरूरी है, क्योंकि जब आप उसको विजुअली करते हैं आपके यहां रिकॉर्ड हो जाता है, ये मेरा कर्म है, फेंक दिया, ये इस बॉल पर चला गया है, ठीक है। अब ये इस दीवार पर हिट करेगा और ये बॉल क्या होगा, वापस आएगा। ये किस डायरेक्शन और स्पीड में आएगा, जैसे हमने फेंका है। इसका मतलब दो चीजें, एक बॉल फेंकते हुए ये मत देखना कि बाकी कैसे फेंक रहे हैं, और दूसरा बॉल आते हुए भी ये मत देखना कि दूसरों की ऐसी क्यों आ रही है, मेरी क्यों नहीं। कल हमने देखा कंपैरिजन, कंपैरिजन जेलेसी कौन से कॉलम में है, लो एनर्जी। क्यों लो एनर्जी, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिसका सिर्फ नुकसान है। तो जो बॉल हम फेंक रहे हैं वो कर्म है, जो बॉल वापस आ रही है वो क्या है, वो डेस्टिनी, वो भाग्य है। जो हम फेंक रहे हैं थॉट्स वर्ड्स बिहेवियर, जो वापस आ रहा है सिचुएशंस परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, काम कारोबार में उतार चढ़ाव, प्रकृति की उथल पुथल, कुछ भी जो बाहर से मेरी तरफ हो रहा है। ये इक्वेशन हमेशा क्लियर रखनी है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है वो भाग्य। क्लियर हो गया बिल्कुल। भाग्य में क्या क्या आया, भाग्य में क्या क्या था, रिटर्न बॉल में क्या क्या था, फर्स्ट चीज परिस्थिति सिचुएशन, दूसरा लोगों का व्यवहार पीपल्स बिहेवियर, तीसरा शरीर की हेल्थ, क्योंकि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो मेरा शरीर है। तो आत्मा के अलावा सब कुछ जो है वो मेरे लिए बाहर है, आत्मा के अलावा सब कुछ जो है वो बाहर है। आत्मा जो कर रही है वो कर्म है, बाहर सब कुछ जो हो रहा है वो परिणाम है। तो हेल्थ ऑफ द बॉडी, फोर्थ प्रोफेशन में कुछ भी उतार चढ़ाव, सडनली आपको कुछ बहुत अच्छा मिला, ये भी कर्मों का परिणाम है। सडनली कुछ अटक गया, ये भी कर्मों का परिणाम है। सडनली कुछ गिर गया, वो भी कर्मों का परिणाम है। बॉल वापस आ रही है। एंड लास्ट प्रकृति, देख रहे हैं आजकल प्रकृति की उथल पुथल, देख रहे हैं प्रकृति की उथल पुथल। तो ये प्रकृति की उथल पुथल का कारण कौन है, कौन है कारण, कौन है कारण, हमारे कर्म। इसीलिए अब से कम प्रकृति के साथ अच्छा रिश्ता बनाना शुरू करें, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति का सदुपयोग करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आने वाले समय में ये प्रकृति और उथल पुथल करने वाली है, उसके साथ दोस्ती करके रखो, संभालेगी आपको फिर वो तब। यस, प्रकृति के साथ भी हमारा पर्सनल कर्म भी होता है। आप पानी को बचाओ, पानी आपका ध्यान रखेगा। आप चीजों को संभाल के करो, चीजें आपका ध्यान रखती हैं। इवन जड़ चीजों के साथ कर्म बनता है, इवन जड़ चीजों के साथ कर्म बनता है। आप उसका सदुपयोग करो, आप उसको संभाल करो, ऐसे फेंक रहे कर रहे ऐसा नहीं, हर स्टेप पे कर्म है, हर स्टेप पे। तो प्रकृति का ध्यान रखना है, और प्रकृति का ध्यान रखने के लिए एक चीज जरूर करनी है, और वो है अपने जीवन को सादगी पर लेकर जाना है, पर्यावरण से कम कंज्यूम करना है। हम कंज्यूम करते हैं ना पर्यावरण से, हर एक कपड़ा जो हम खरीद रहे हैं इसमें कितना कुछ जाता है, ऐसे एक कपड़े को बनाने के लिए कितना पानी जा रहा है, कितनी रिसोर्सेज जा रही है। और हम क्या करते हैं, थोड़े दिन पहनते हैं, कहते बोर हो गए, नया लेना। तो प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए है, प्रकृति के पास इच्छाओं के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन को थोड़ा सा सादगी पर लेकर जाएंगे, जो जरूरी है वो खरीदेंगे, सब कुछ खरीदो लेकिन जरूरत के लिए, बोर हो रहे हैं इसलिए नहीं, दूसरे कर रहे हैं इसलिए नहीं। हमेशा याद रखना, दूसरे अपना कर्म बॉल फेंक रहे हैं, उन्होंने सबने नई गाड़ी ली तो मुझे भी लेनी चाहिए, पर हमारी तो ठीक चल रही है ना, अभी हमारी तो ठीक चल रही है, पर सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ले लेनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं वो उनका बॉल है। तो लोग क्या कहेंगे ये पैरामीटर रहता है, तो हमारा बॉल गलत चला जाता है। हमेशा अपना बॉल किसने डिसाइड करके फेंकना है, किसने करना है, मैंने। लोग क्या कह रहे हैं कैन नॉट बी द क्राइटेरिया, कलयुग चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं सत्युग में रखना क्राइटेरिया, तब बाय डिफॉल्ट अच्छे हो जाएंगे कर्म सारे। समय को देखना पड़ता है। तो प्रकृति के साथ भी दोस्ती रखना। जब हम दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हम उसका लेबल देखते हैं कि कैन आई अफोर्ड दिस। अभी हम सब इतना कमाते हैं तो हम अफोर्ड ही कर लेते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। अगली बार जब कुछ लेने जाएंगे तो अपने आप से पूछना, कैन आई अफोर्ड, नहीं, कैन द प्लैनेट अफोर्ड, कैन द प्लैनेट अफोर्ड। फिर आप सिर्फ वही लेंगे जितनी जरूरत है। किस किस के पास कपड़े ज्यादा, कबड़ कम है, अलमारी छोटी पड़ जाती है आजकल। ये नहीं होना चाहिए। अलमारी छोटी पड़ रही है, जूते इतने के जगह रखने को नहीं है, नहीं। देन इट इज अ टाइम टू शिफ्ट टू सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी, जैसे ही यहां खुशी और शक्ति बढ़ती जाती है ना, कपड़ों से, गैजेट से, गाड़ियों से खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं ना, अपने आप सादगी आ जाती है। हम प्रकृति को इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि हम चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा ये खरीद लिया, बोर हो गए, अभी अगला खरीदे, अभी और खरीदे, और खरीदे। तो हम पैसों से चीजें खरीद के चीजों से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी जो एडवर्टाइजिंग हो रही है हमारे इसी संस्कार को एक्सप्लॉइट कर रही है। कर रही है कि नहीं? हैप्पी फेसेस, ये खरीद लो आप हैप्पी हो जाएंगे। अपने बच्चे को ये खरीद के दे दो, वो हैप्पी हो जाएगा। इतना खरीद करके हैप्पी हो जाते सारे, तो आज हम डिप्रेशन की तो बात न ही कर रहे होते ना। फिर तो हैप्पी होना चाहिए था सबको। पिछले कुछ सालों में हमने इतना कुछ खरीद लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर्म सादगी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं आपने व्हाइट कपड़े पहनने। सिंप्लिसिटी मतलब जितना जरूरी है उतना लेना है, आवश्यकता पर लेना है, इच्छाओं के लिए नहीं। तो आपका प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा कर्म बनेगा, और यही कर्म अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना है, क्योंकि प्रकृति की उथल पुथल वो शायद ज्यादा देखेंगे, तो वो अपना कर्म अभी से सेट करें। तो परिणाम में, रिटर्न बॉल में क्या क्या आ रहा है? सिचुएशंस, लोगों का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, काम कारोबार में जो हो रहा है, और पांचवा प्रकृति। लेकिन ये पांचों चीजें जो हमारे पास आ रही हैं, ये किसका रिजल्ट है? किसका रिजल्ट है? हमने जो बॉल फेंकी थी। अब एक सेकेंड के लिए कल वाली सीन को रिवाइंड करते हैं। कल कौन बहन? हाँ, आप ही थे ना। एक सेकेंड पर से मैं वही सुबह आपको वहां ढूंढ रही थी उस सीट पे। एक सेकेंड को अब नए इक्वेशन से इनको देखेंगे। ये यहां खड़े हैं, मैं इनके साथ गलत तरह से बात कर रही हूं। कल हमने देखा कि यहां से जब हम गलत बारे से बात कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो गलत का रिटर्न गलत, गलत का रिटर्न इग्नोर, गलत का रिटर्न क्षमा, गलत का रिटर्न दुआ। वो सारे ऑप्शंस हमने देखे, मतलब हमने देखा उनके कर्म के कितने सारे ऑप्शंस थे। सबसे पहली चीज अभी क्लियर करना कि सबसे पहली बात यह है कि मैं उनके साथ इस तरह से गलत बात कर क्यों रही हूं। क्यों कर रही? मैं आपके साथ गलत व्यवहार, अब आपको अपने मन को यह आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद इतने ऑप्शन सोचने नहीं पड़ते, अपने आप ही हाईएस्ट ऑप्शन आ जाता है सामने। ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? लेकिन मैं दुखी हूं, वो हमारी कल तक का सिलेबस था कि मैं दुखी हूं इसलिए कर रहे हैं। अब आज के चैप्टर के हिसाब से देखो डीपर मीनिंग, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। अच्छा, जब अभी करते हैं, जब मैं आपके साथ ऐसे गलत बिहेव कर रही हूं, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? नहीं, गलत नहीं, आप उसको ड्रॉ करो ऐसे हाथ से। आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? यहां, बस करो करो, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा सारा। करिए, करो। नहीं, ये नहीं, आपके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है, होल्ड इट लाइक दैट। बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है। अब आंसर करो, बॉल ऐसे डायरेक्शन में आ क्यों रही है? बस, फुल स्टॉप। अब इसके ऊपर कोई वेस्ट थॉट नहीं चलेगा। और अभी तक हमें ये याद नहीं था ना, तो हम क्या कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हमें पता है कोई भी बॉल अगर ऐसे आ रही है तो बॉल ऐसे आ सकती नहीं जब तक वो बॉल ऐसे जाती नहीं। बस ये फिक्स कर लिया, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। कोई भी बॉल ऐसे आएगी, क्यों आई, कैसे आई, ऐसे कैसे आई, मेरे साथ ही बार बार इतने थाउजेंड थॉट्स हम कभी नहीं चलाते, हम एक ही थॉट चलाते हैं। कौन सी थॉट क्रिएट करेंगे, मैंने फेंका था वापस आया है, बोलो खत्म। एनर्जी वेस्ट होती है इनटू वाई वाई वाई, उस एनर्जी को कंजर्व करो क्योंकि वो एनर्जी की अब बहुत जरूरत है। अब वो बहन कहेगी मैंने कब फेंका था, मैं तो पहली बार आपको आज मिली तो क्वेश्चन ही नहीं है मैंने कब आपको फेंका था। मैंने तो आपके लिए गलत कभी सोचा नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा अच्छा आपके लिए सोचा है, तो पहले कभी फेंकने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो अभी क्या आंसर देंगे उनको। हमेशा याद रखना है कर्मों का जो हिसाब किताब है वो रिश्ते और रिश्ते के बीच नहीं है, वो शरीर और शरीर के बीच नहीं है, वो ऑफिस में रोल और रोल के बीच नहीं है, वो किसके और किसके बीच है। कहां उंगली जाएगी वापस, यहां। आज हम इस ड्रेस में हैं, हम किसी को मिलते हैं, ठीक है, जस्ट एक बार जाओ आप, एक मिनट। हम किसी से मिलते हैं और मिलते मिलते बात करते करते एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है। दोनों जने अपने अपने घर चले जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, ड्रेस चेंज हो गई है, वो वही हैं जिन्होंने पिछली बार आर्ग्यूमेंट किया था, अब दोनों की ड्रेस चेंज हो गई है और अब वो फिर मिलते हैं। तो अगली बार सेकेंड मीटिंग, पिछली बार आर्ग्यू करके आए थे तो सेकेंड मीटिंग में बहुत प्यार से बात करेंगे, नहीं, सेकेंड मीटिंग में और थोड़ा एक दूसरे को ऐसे ही देखेंगे करके, फिर कुछ ठीक नहीं करते, फिर अपने अपने घर जाते हैं, अगले महीने फिर मिलते हैं, अगले महीने फिर ड्रेस बदली हुई है, अगले महीने तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, फिर अपने अपने घर जाते हैं, तीन महीने के बाद फिर मिलते हैं, फिर ड्रेस बदली हुई है, अब तो एक दूसरे के बारे में दूसरों को भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ था, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पहुंच कहां रहा है, हेट्रेड की तरफ, क्योंकि हर नेक्स्ट टाइम जब मिले तो वो कार्मिक अकाउंट क्या होता गया, और एंटेंगल्ड। क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्या ये हर बार जब मिलेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा, यस और नो। और अभी हम एक लाइफ टाइम में देख रहे हैं, सिर्फ ये ड्रेस को चेंज करें, हम ये वाली ड्रेस को, एक बार मिले, दो बार मिले, चार बार मिले, पांच बार मिले, हर बार झगड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये देखो ना, ये तो अपने जीवन में सारा दिन हो रहा होता है, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा, यस और नो, नहीं, इसको चेंज कौन करेगा, हम या मैं। सो हमेशा याद रखना, कार्मिक अकाउंट को दो लोग नहीं चेंज करते, दोनों में से कोई एक उसको चेंज कर सकता है, और वो एक कौन होगा, मैं। से दैट टू योर सेल्फ एवरी टाइम, उस कार्मिक अकाउंट को दोनों में से एक जो चेंज करेगा वो एक कौन होगा, मैं, बोलो मैं। इसमें मैं बहुत जरूरी है, बाकी चीजों में मैं नहीं बोलना है, लेकिन इसमें मैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बार बार करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं इसलिए झुकूं, मैं इसलिए करूं, क्योंकि वो किसका कर्म चेंज हो रहा है, मैं। अब जिस तरह से हमने ये ड्रेस चेंज की, हर बार मिलते गए, लेकिन पिछली बार की मीटिंग का झगड़ा हमारा कंटिन्यूड रहा, जब तक किसी एक मीटिंग में किसी एक ने चेंज किया, तो उस दिन उन्होंने एक दूसरे से अच्छे से बात करनी शुरू कर दी, और उसके बाद जब वो फिर मिलेंगे तो वो अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी एक मीटिंग में उस कार्मिक अकाउंट को चेंज कर दिया, राइट। तो एक है ये ड्रेस, दूसरी कौन सी ड्रेस है, शरीर रूपी ड्रेस। हम जिनसे भी आज मिल रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम किसी से भी पहली बार नहीं मिल रहे। जितने भी हमारे क्लोज कार्मिक सर्कल में हैं, हम किसी से भी पहली बार नहीं मिल रहे। We've met before, we are meeting now, we will meet again. Majority karmic equations बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ में थोड़ा सा है, दोनों में से उसको एक कौन ठीक करेगा? दोनों में से एक कौन है जो उसको ठीक करेगा? मैं, इसको पक्का करो। तो अब मैं इस आत्मा के साथ गलत तरह से बिहेव क्यों कर रही हूं? बोलिए, क्योंकि क्योंकि हाँ हाँ, अब ये पक्का कर लो अपने आप के साथ। अब लेकर आओ सामने अपने जो आपके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे हैं, और अच्छा मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान कर रहे हैं, जस्ट रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है जितना होना चाहिए, उतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए, इंटैंगल होता रहता है, इंटैंगल होता रहता है। तो याद रखना है, इसमें गलती उनकी नहीं, ये हम दोनों का हिसाब किताब है। हम क्या करते हैं, फिंगर उधर रख देते हैं, इसलिए कल हमने देखा फिंगर बाहर नहीं रखनी है। कहाँ रखनी है? ये इनका और मेरा कर्मों का हिसाब किताब है। इस वोकैबुलरी को फिक्स करें, इट इज आर कार्मिक अकाउंट, नॉट देयर मिस्टेक। इट इज आर कार्मिक अकाउंट, ये हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, उनकी गलती नहीं। कुछ भी जो आपके जीवन में है, जब से आप इस शरीर में आए, आपने जन्म लिया, पंडित जी ने जन्म पत्री बनाई। किस किस के पास जन्म पत्री है? हाँ, किसको उसको शौक होता है देखने का, आगे क्या, आगे 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 क्या, अगली आगे क्या होने वाला है? अगर अभी दूसरे हॉल में कोई आए जो हाथ देखकर आपको बता दे कि आगे क्या होने वाला है, तो आप इधर बैठेंगे या उधर जाएंगे? किधर जाएंगे? एक होता है जानना कि आगे क्या होगा, दूसरा होता है आगे जैसा बनाना चाहते हैं अपनी चॉइस से बनाना। कौन सा करना है? एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कौन सी बॉल आने वाली है। किस साइंस के बेसिस पे सिखाती है? क्योंकि वो बॉल आने वाली किस बेसिस पर है, जो हम पहले फेंक कर आए हैं। इसीलिए बच्चा जन्मता है और जन्म पत्री बन जाती है। जन्म पत्री इसलिए उसको बोलते हैं, जन्म और पत्री बन गई। जन्मते ही पत्री कैसे बनी? उस आत्मा ने कोई कर्म नहीं किया है अभी तक। तो कर्म कब करके आई है वो आत्मा? सो दिस इज अ सिंपल प्रूफ कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं, इसलिए बच्चे के पैदा होते ही डेस्टिनी लिखी जा रही है। अभी तो बच्चे ने अभी तो बच्चे को नाम भी नहीं मिला है, लेकिन उसको बताया जाता है परिवार को, ये होगा 10 साल बाद, ये होगा 15 साल बाद, ये होगा, ये 2 साल बहुत अच्छे हैं, ये 5 साल बहुत मुश्किल हैं। अभी तो उसने एक भी कर्म नहीं किया, तो वो कौन सी बॉल्स के बारे में बताया जा रहा है? 5 साल बाद ये बॉल आएगी, 10 साल बाद ये बॉल आएगी, जब वो 50 साल का होगा तो ये बॉल आएगी। ये किस बेसिस पे बता रहे हैं? सिंपल है, वो इसलिए बता सकते हैं कि कौन सी बॉल आएगी क्योंकि वो बॉल तो हम फेंक कर आए हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट हो इधर और हम बॉल फेंके, वो अभी कैलकुलेट करके बता देंगे, आपने ऐसा फेंका ना, वो ऐसे आएगी और इस टाइम पर आएगी, वो बता देंगे, इट्स साइंस। तो वो हमें बॉल का बता सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हमें कर्मों का बता सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कौन सी बॉल आएंगी, स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं बताती है कि कौन सी बॉल आएगी। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि कोई भी बॉल आए फेंकनी कैसे है नेक्स्ट, वो सिखाती है। क्योंकि जैसे ही सिचुएशन आती है, हम जैसा सोचते फील करते हैं वो हमारी नेक्स्ट बॉल है जो हम फेंकते हैं, राइट होता है? नहीं सिस्टर, एक बार फिर से खड़े हो जाओ लास्ट टाइम के लिए, प्लीज फिक्स दिस डायग्राम, इसको फिट करना है। मैं इनसे कैसा बिहेव कर रही हूं वो क्या है? वो क्या है? इनकी पहले वाली फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है, तो हम कहते हैं मेरा पास्ट मेरे सामने आ रहा है, और पास्ट सिर्फ नेगेटिव बातों में नहीं, सारा दिन जो इतना अच्छा अच्छा हो रहा है ना, वो भी सारा मेरा पास्ट कर्मा ही वापस आया है। चार दिन निकालकर यहां आना, अपने लिए समय निकालना, इसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे ना, बिकॉज आपने प्रायोरिटाइज किया अपने आप के लिए। बाकी सबने सोचा नहीं कहां से चार दिन निकालेंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? यही फर्क हुआ कि कुछ तो कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से बुद्धि ने ये निर्णय लिया। और अब आप सीख लेंगे कि खुशी हमने क्रिएट करनी है। बाकी सबने सोचा नहीं चार दिन छुट्टी लेंगे तो इतने पैसे कट जाएंगे तो हम ये सामान नहीं खरीद कर पाएंगे, बट वो सामान से तो खुशी आनी थी ना। तो किसकी बुद्धि ने कौन सा निर्णय दिया हर क्षण, वो भी हमारे पूर्व कर्मों और संस्कारों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो अब इनका आप आंसर करते जाना। इनके पास जो बॉल आ रही है वो कौन सी बॉल है जो ये बोलिए पास्ट में फेंक कर आए थे? अब अपने लिए रिकॉर्ड कर लो, हर चीज जो मेरे साथ हो रही है वो मेरा पास्ट वापस आता है, हर क्षण पास्ट वापस आ रहा है। अब सेकंड, जब ये बॉल आ रही है इनके कंट्रोल में क्या है? इनके कंट्रोल में क्या है? क्या ये मुझे कंट्रोल कर सकती है? नो। क्या ये मुझे चेंज कर सकती है? नो। इसका मतलब क्या ये इनकी तरफ आती हुई बॉल को चेंज कर सकती है? हम ज्यादातर वो करने की कोशिश करते हैं ना, वो चेंज हो जाए। तो इनके कंट्रोल में जो बॉल वापस आ रही है वो नहीं है। इनके कंट्रोल में क्या है? जो नई बॉल अभी फेंकनी है, विच मीन्स अभी कैसा फील करना है, अभी कैसा बात करना है, अभी कैसा व्यवहार करना है। इसलिए जो हमने कल देखा कि जो नई बॉल आप फेंकेंगे वो कौन से लेवल की होनी चाहिए, हाथ रखिए, ऐसे वाली नहीं डाल देना, ऐसे वाली भी नहीं डालना, ऐसे वाले भी नहीं डालना, कौन सी वाली डालना? हाईएस्ट। तो हर क्षण पास्ट आपके पास वापस आ रहा है। आप अभी जो करेंगे वो आपका प्रेजेंट बॉल है जो आप फेंक रहे हैं, और जो प्रेजेंट बॉल आप फेंक रहे हैं वो फिर से आएगा वापस। तो हर क्षण तीनों काल इकट्ठे काम कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसको फिक्स करो, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, तीनों काल समझते हुए कर्म करना। फिर डिसीजन लेना बहुत इजी होता है लाइफ में, ये करना ये नहीं करना ऐसे करना है, डिसीजन लेना बहुत इजी होता है अगर तीनों काल याद रहेंगे। जो मेरे साथ हो रहा है हाथ करिए, जो मेरे साथ हो रहा है पास्ट वापस आ रहा है, अब मैं जो रिस्पॉन्ड करूंगी प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और जो प्रेजेंट में जाएगा वो ही फ्यूचर में आएगा। इसलिए दुनिया ने सिखाया एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमने सोचा उसने लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है राइट है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है राइट है। प्री डेस्टिन्ड मतलब प्रीवियसली रिटन डेस्टिनी, पहले ही लिखी गई थी। इसलिए लोग कहते हैं जो लिखा है वही तो हो रहा था ना, जो आपकी किस्मत में लिखा है वही तो हो रहा है। वो सब तो पता था कि जो लिखा है वो हो रहा है, सिर्फ ये याद रखना था लिखा किसने है, किसने लिखा। तो एक ये याद रखना चाहिए लिखा किसने है, और एक ये याद रखना चाहिए अब की क्या पावर है। सामने से जो बॉल आ रही है कितनी भी डिफिकल्ट हो, एंड कितनी भी मतलब कितनी भी, फिर भी उस बॉल की पावर कम है क्योंकि वो पास्ट है जो हो चुका है। कौन सी बॉल ज्यादा पावरफुल है, जो आ रही है या जो अभी फेंकेंगे? सो फिर से इनको देखते हैं, मैं इनके साथ इतना गलत व्यवहार कर रही हूं, इतना गलत कर रही हूं, सबके सामने कर रही हूं, बात बहुत बड़ी है, लेकिन जब इन्होंने क्षमा करके दुआ दे दी तो इनके लिए सफरिंग, इनके लिए सफरिंग कुछ भी नहीं है। मतलब जो सिचुएशन आई वो बहुत बड़ी थी, लेकिन इन्होंने कर्म इतना अच्छा अभी कर लिया कि इनकी खुशी कैसे रही कांस्टेंट। और दूसरा हो सकता है कि मैं कुछ नहीं बोलूं, मैं सिर्फ ऐसे देखूं इनको और ये 1000 थॉट्स चला दे, ऐसे देख रही है मतलब ऐसे क्यों देख रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये फिर भी ऐसे देख रही है, जब देखो मेरी तरफ ऐसे ही देखती रहती है, इनको लंबा, और हमें पता ही नहीं चलता 1000 बॉल फेंक दी होती देर में। एवरी थॉट इज अ वॉल। तो मैंने इतना बोला फिर भी कोई सफरिंग नहीं, क्योंकि प्रेजेंट बॉल राइट थी। मैंने सिर्फ एक आंख से ऐसा देखा और इतनी थॉट्स क्रिएट कर दी और सफरिंग ज्यादा हो गई। तो सफरिंग या हैप्पीनेस आने वाली बॉल पर निर्भर नहीं है। वो किस पर निर्भर है? वो किस पर निर्भर है? अभी फेंकने वाली बॉल पर। तो आपकी जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले तो बताऊं बार बार पता ही नहीं करना चाहिए क्या लिखा है। क्यों पता करना है क्या लिखा है? क्योंकि जो लिखा है वो तो आने ही वाला है। आपके पता करने से वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। हम उनको ही जाके बोलते हैं पंडित जी कुछ कर दो ना, ये बात नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता है। वो बॉल को आने से भगवान भी नहीं रोकता है, बिकॉज वो हमारे कर्मों का परिणाम है। भगवान किसी के साथ बायस्ड नहीं है। भगवान आपको ये सिखा सकते हैं वो आएगा तो आप अभी ऐसे वाली फेंको, लेकिन जो आप फेंक कर आ गए हैं उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट है जब जो हो मेरे पास पावर होनी चाहिए कि इस बार मुझे कौन सी बॉल फेंकनी है, हाईएस्ट वाइब्रेशन बॉल। रेडी? जब आप मकान बनाते हैं तो क्या आप सरकार के अलग अलग विभाग में जाके ये पता करते हैं अगला भूकंप कब आने वाला है? आप पूछना चाहिए ना, हम मकान बना रहे हैं हमें पता होना चाहिए कब भूकंप आएगा कब बाढ़ आएगी, ऐसा हम पूछते हैं जाके? क्या हम प्रेडिक्शंस लेते हैं जाकर? नहीं, हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मकान बना देते हैं। बस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मकान बना दो, अभी भूकंप आए या बाढ़ आए मकान स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पिरिचुअलिटी वो सिखाती है, अपनी जीवन को एक मजबूत नींव पर खड़ा करो और उस नींव को हर रोज मेडिटेशन और ज्ञान से स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब भी कोई बात आएगी आपके पास उतनी शक्ति होगी कि आप उस सीन में भी कौन सा बॉल फेंकेंगे, हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो लोएस्ट वाइब्रेशन को हम डार्क कलर देते हैं और हाईएस्ट वाइब्रेशन को हम व्हाइट कलर देते हैं। तो हमारी तरफ से कौन से कलर की बॉल जाने चाहिए हमेशा? तो कुछ भी याद नहीं रहे ना ये 3 दिन का, आप सिर्फ ये याद रखना जब भी कोई बात आए आप बस ये याद रखना मुझे व्हाइट बॉल फेंकनी है, मुझे व्हाइट बॉल फेंकनी है, मुझे तुरंत 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 अपनी थॉट्स को चेंज करना है तुरंत। कभी होता क्या है, सामने से लो एनर्जी बॉल आ रही है, हम एक और लो एनर्जी बॉल फेंक देते हैं, तो पास्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मतलब ये नहीं मैंने गुस्सा किया तो उन्होंने भी गुस्सा किया, सिर्फ वो नेगेटिव नहीं है, मैंने गुस्सा किया उन्होंने हर्ट हो गई चुपचाप अंदर रोती रही, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव सिर्फ ये नहीं है जब कोई चिल्ला रहा है, जब कोई गलत कर रहा है, नेगेटिव मतलब अंदर अंदर रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सब कुछ जो लेफ्ट हैंड कॉलम में है, सब कुछ जो लेफ्ट हैंड कॉलम में था कल जो लिखा वो हमारी लोअर एनर्जी बॉल है, सब कुछ जो राइट हैंड कॉलम में है वो हमारी हायर एनर्जी बॉल है। तो हमारा हर कर्म कौन से कॉलम से चाहिए? अब आप बताओ, किसी को क्षमा करना ये किस पर एहसान है? सिंपल हो गया। अब सोचना पड़ेगा कि उनको क्षमा करें कि नहीं करें। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा किया मैं क्यों क्षमा करूं? भाई हम उनको नहीं क्षमा कर सकते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग अदर पीपल। अगर मैंने आपके साथ गलत किया आप सब मिलकर भी मुझे क्षमा कर दें तो भी मेरे कर्म का परिणाम तो आना ही है। इवन अगर देश का कानून मुझे क्षमा कर दे, कर्मों का कानून मुझे नहीं छोड़ता है। बॉल जो मैंने फेंक दी वो वापस आनी ही आनी है। सो देर आर टू लॉज, वन इज लॉ ऑफ कंट्री, वन इज लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कंट्री विल नॉट वर्क विद एवरीबडी, वो तो सिर्फ बड़े 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 कामों के लिए है, लेकिन ये सारा दिन की जो छोटी 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 बातें हो रही है लॉ ऑफ कर्मा उस पर वर्क कर रहा है। तो अगर आप मुझे क्षमा कर भी दें, मुझे क्षमा करने से किसका मन चित शांत हो जाएगा? आपका। तो आपने क्षमा की जब बॉल फेंकी तो आपने अपनी हायर एनर्जी बॉल फेंकी, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, आपका शरीर ठीक चलेगा। लेकिन मैंने जो गलत कर्म किया था उसकी बॉल को आप चेंज नहीं कर सकेंगे, वो तो मेरे पास में आएगी ही आएगी। हाँ, ये अलग बात है, जब वो आएगी मैं अपने आप को अगर थोड़ा हायर ले जाऊं तो मैं उसको इजीली सामना कर लूंगी। इसीलिए क्षमा करें, कितनी जल्दी करें। और यही अगर हम ऑपोजिट करते हैं कि हम बात को पकड़ के रखते हैं, हम कहते हैं हम नहीं भूल सकते, तो मन चित्त में सबकॉन्शियस में वो एक दर्द बैठा रहता है, इट्स लाइक अ वुंड, एक चोट है, वो पीछे बैठी रहेगी। उसका असर शरीर पर होता रहता है क्योंकि वो वाइब्रेशन बॉडी को जा रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आत्मा एक दिन शरीर छोड़ दूंगी, मेरे साथ क्या चला जाएगा, मेरे साथ क्या चला जाएगा, हम फिर मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। जब अगली बार मिलें तो मीटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बढ़िया। उसके लिए ये वाली मीटिंग कैसी होनी चाहिए, बढ़िया। उसको बढ़िया कौन बनाएगा, हम नहीं, मैं, हम नहीं, दैट हैज टू बी चेंज, नॉट हम। हम बोलेंगे तो फिर हम कहेंगे वो तो कुछ कर ही नहीं रहे ठीक करने के लिए कुछ भी, इट इज ऑलवेज मैं। इसीलिए बचपन से सीखा, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, गलत वाला भी और अच्छा वाला भी, जो करेगा सो पाएगा। तो क्षमा करना इजी, राइट? अब हमने क्या किया था, अपने वाइट कर्म बॉल को हम और ऊपर लेकर गए थे कि सिर्फ क्षमा नहीं किया, उनको क्या भेजा, दुआ भेजी, हाईएस्ट वाइब्रेशन कर्म, हाईएस्ट वाइब्रेशन कर्म। आज से दो कर्म फिक्स करिए, कैसा भी सामने वाला व्यवहार करे, सबसे पहले आप उसकी एनर्जी से डिटैच हो जाएंगे। जब आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कैसे रखेंगे, हायर, डिटैच हो गए। जैसा भी कोई कर्म सामने वाला करे, अगर वो अनएथिकल है देन समबडी हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। उसके अलावा अगर वो सिर्फ उनका एक संस्कार है तो मुझे क्या करना है, मुझे उनको दुआएं देनी है। कल हमने देखा, अगर एक लोअर जा रहा है तो हमें उसके साथ लोअर नहीं जाना है, नहीं तो हम दोनों लोअर खींचते जाएंगे। मुझे हायर जाना है, बट हायर जाएंगे कैसे, सिर्फ दुआ देने से। जिस गुण की उनमें कमी है उनको वो दुआ दो, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप शांत आत्मा है, आप प्रेम स्वरूप है। एक मुरली है, मुरली हम उसको कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य जो हम रोज सेंटर पे स्टडी करते हैं। आज सुबह आपने सीखा बाबा हम किसको बोलते हैं, आज सुबह सीखा बाबा हम किसको कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव को, देहधारी को नहीं। जो फोटो आप यहां देख रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको परमात्मा ने यूज करके हमें ये ज्ञान दिया। वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, उन्होंने भी ये ज्ञान साथ साथ ही सीखा, तो वो फर्स्ट स्टूडेंट है, वो फर्स्ट स्टूडेंट है। जो अब हमारी बड़े हैं, दादियां हैं, जो इस संस्था को संभालते हैं, वो भी गुरु नहीं है। उनके रोल और पोजीशन में क्या लिखा जाता है पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, स्पिरिचुअल हेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब संभालने के लिए। स्पिरिचुअल हेड कौन है, स्पिरिचुअल हेड सिर्फ एक है, कोई और स्पिरिचुअल हेड नहीं है, सब स्टूडेंट्स है, सब स्टूडेंट्स है। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक है परमात्मा, हम सब उसके बच्चे हैं, उसके स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं। तो जो हम सेंटर पर मुरली सुनते हैं वो परमात्मा के महावाक्य हैं। तो कुछ दिन पहले एक मुरली में बाबा ने कहा, इसको पकड़ लेना, बड़ा मजा आता है इसको करने में और इजी भी बहुत है और रिजल्ट भी बहुत अच्छी मिलती है। तो परमात्मा ने कहा, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, है ना, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, आप यहां से सिर्फ दुआएं दो, और कुछ दुआ नहीं पता चले क्या देनी है, आप सिर्फ एक लाइन बोलो, वो बहुत अच्छे हैं, बोलिए, ठीक है। अब एक बॉल फेंकने से नहीं होगा, थोड़ी ज्यादा फेंकनी पड़ती है, ठीक है। तो हम बोलते जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ द इक्वेशन, वो बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा ने कहा, आपका बहुत अच्छा बोलते बोलते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, देखा, यहां हमेशा याद रखना, हम सब बहुत सेल्फिश है, पहले हम किसको अच्छा बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स सेल्फिश. सेल्फिश मीन्स सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? खुद का. और जो जितना सेल्फिश बनता जाएगा वो उतना ज्यादा सेल्फलेस बनता जाएगा. ये सिद्धांत है. जो जितना सेल्फिश बनता जाएगा, मतलब जो जितना अपना ध्यान रखता जाएगा, उसकी क्षमता दूसरों को देने की बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी. तो कैसा बनो? कैसा बनो? सेल्फिश बनो. तो बाबा ने कहा को वो कुछ भी कर रहे हैं, आप सिर्फ कहना शुरू करो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. कहते कहते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? उंगली रखो, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? ये. फिर बाबा ने कहा आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनके पास जाएंगी और वो नेगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात वो बहुत अच्छे बन जाएंगे. सिंपल फॉर्मूला. वो कैसे हैं? अभी आंख बंद करो, उनको सामने लेकर. और बुरे मतलब बुरे नहीं, बुरे मतलब जिनका व्यवहार जब पसंद नहीं आता. वो अपने बच्चे भी हो सकते हैं. हम कहते हैं ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. दैट विल रेडिएट नेगेटिव एनर्जी. वो बहुत अच्छे हैं. और जैसे ही हम और बहुत अच्छे बोलो, और अगर आपको दिख रहा है कौन से संस्कार की दुआ देनी है तो वो भी देना है. और हम ये कॉन्स्टेंट थॉट उनके लिए क्रिएट करते हैं, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनका निर्णय राइट है, उनका कर्म परफेक्ट है. फ्लड देम विद ब्लेसिंग्स. तो सबसे पहले किसका मन चित बहुत अच्छा बन गया? हमारा. इसका मतलब हम कहाँ चले गए? ऊपर. और हमने वो वाली वाइब्रेशन उनको रेडिएट की तो वो भी कहाँ चले गए? ऊपर. सिंपल है ये फॉर्मूला. करेंगे ये घर जाकर. तो कोई भी बात हो, व्यक्ति ठीक ना व्यवहार कर रहा हो, वो बहुत अच्छे. दूसरा, कोई भी सिचुएशन फेवरेबल नहीं हो, कोई सिचुएशन हो फेवरेबल नहीं है, सही परिस्थिति नहीं आई है, जैसे ही परिस्थिति सामने से आती है, हमारी फर्स्ट थॉट, हमारी फर्स्ट बॉल है जो हम फेंकेंगे. तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, मुरली में आया, हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, अब वो हमारा सत्य बन चुका है. और वो ये, जैसे ही कोई बात आती है हम उसको फर्स्ट ब्लेसिंग देते हैं, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है. बोलिए. जबकि वो बात सारी गलत फलती आई होती है सामने शुरू में, तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता उसके अंदर. लेकिन हमने सीखा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके एविडेंस बेस्ड ट्रुथ, सिर्फ पहले संकल्प में उस बात पर हम जीत पाते हैं. बचपन से सुना था, मन जीते, क्या लाइन है, मन जीते जग जीते. जग को नहीं जीतना है, पहले किसको जीतना है? पहले मन को जीतना है. लेकिन जब बात आती है मन उस बात के सामने हार जाता है. जब मन क्या कहता है, इतनी बड़ी बात आई, अब क्या होगा, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो सब सही किया था फिर भी ऐसा हुआ, तो कौन बड़ा हो गया? बात बड़ी हो गई और हम कैसे हो गए? छोटे हो गए. सबसे पहली लाइन में क्या करना है? खुद को बड़ा करना है, बात को छोटा करना है. तो क्या लाइन बोलेंगे? ये बात क्यों आई? बोलो बोलो. यहां नहीं बोलेंगे तो ट्यूसडे से घर पे कैसे बोलेंगे? ये मेरे कल्याण के लिए. किस किस के जीवन में ये अनुभव है कि जब बात आई थी तो अच्छी नहीं लगी थी, कुछ सालों के बाद बोला वो जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? ओ, आपको देखना पड़ेगा. सब लोग हाथ उठा रहे हैं, सोचो. सब हाथ उठा रहे हैं. इसका मतलब बात तो ठीक हो भी जाती है, लेकिन उतने टाइम में हमने कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी? लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होंगे जहां बात ठीक नहीं भी होगी, लेकिन एक जना जरूर ठीक रहेगा. कौन? हमेशा याद रखना, हमें सिचुएशन को कंट्रोल नहीं, पहले खुद का ध्यान रखना है. क्योंकि मन जीते जग जीते है, संकल्प से सृष्टि बनती है. क्या लॉ है? संकल्प से सृष्टि बनती है. मेरी दुनिया कौन बनाता है? मेरी दुनिया कौन बनाता है? मेरे थॉट्स. तो सबसे पहले मुझे किस पर ध्यान रखना चाहिए? थॉट्स. हम सबसे पहले दुनिया को ठीक करने लगते हैं. संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प को ठीक कर लो, सृष्टि ठीक हो जाएगी, मतलब हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो क्या लाइन बोलेंगे, ये बात क्यों आई है? कल मुझे एयरपोर्ट पे एक परिवार मिला, कहते हैं वो अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे कहीं, उसका दुबई नहीं कोई तो शहर में कुछ ऐसा प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस। वो बच्चा गया पहले दिल्ली, उसकी फ्लाइट में सो गए, फिर वो वापस आया, फिर ये लेकर गए उसको। वो फ्लाइट ने दुबई जाना था, लेकिन वो माहौल की वजह से वो फ्लाइट कराची गई, वापस आ गए। तीसरा उन्होंने कुछ किया, फिर वो वापस आ गए। तो कल जब वो एयरपोर्ट पे थे, वो 3 अटेम्प्ट्स के बाद वापस आए थे। तो ऑब्वियसली आप इमेजिन करो वो बच्चे का चेहरा कैसा हुआ हुआ होगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद भी, 3 फ्लाइट्स लेने के बाद भी वो बच्चा नहीं पहुंचा जहां उसको पहुंचना था। तो ऑब्वियसली उस बच्चे को क्या लग रहा था, मेरे साथ जो हुआ वो गलत। तो उन्होंने ऐसे कहा, कहते आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा कुछ तो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे आपने। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम स्ट्रांगली फील करते हैं। किसी को अगर परिस्थिति ने 3 बार रोका है कहीं जाने से, 1 बार हो तो भी ठीक, 2 बार हो तो, 3 फ्लाइट्स आप लो और फिर भी आप उस शहर नहीं पहुंचो जहां आपको जाना है, और फिर आप घूम के फिर के वापस अगले दिन यहां आ जाओ, तो कुछ तो चीज है ना जो आपको बचा रही है किसी चीज से। तो वो बच्चा बोलता है, लेकिन बट, आई सेड नो बट, शुक्राना करो अपने भाग्य का और शुक्राना करो अपने श्रेष्ठ कर्मों का कि उसने आपको किसी चीज से क्या किया है, बचाया है। लेकिन वो बात हमें तब सोचनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गए उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे नहीं जाना था उधर फॉर सम रीजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हर परिस्थिति में मुझे किसका ध्यान रखना है सबसे पहले, तो हमेशा क्या ब्लेसिंग देंगे, बात के बाद बोलना कि ये मेरे अच्छे के लिए हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब तक तो हमने क्या सोचा, इवन अ सिंपल थिंग, आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया, उसने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन जिस कॉलेज में उसको चाहिए था उस कॉलेज में नहीं मिला, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दैट, तो हम क्या बोलते रहते हैं उसको, बट वहां नहीं मिला ना, लेकिन वहां मिलता तो बहुत अच्छा होता ना, ये तो सेकंड है ना, तुम फर्स्ट वाले कॉलेज में तो नहीं गए। तो बार बार वी आर रबिंग इन कि हमारे साथ जो हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ। अब बच्चा कॉलेज में तो पहुंच जाएगा, लेकिन कौन से थॉट्स के साथ पहुंचेगा कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। इज दैट द राइट कर्मा बॉल टू थ्रो? नो। सो ऑलवेज टू रिमेंबर, मेरे साथ जो हो रहा है क्या हो रहा है, इस सीन में मेरा क्या है, कल्याण। थ्रो द हाईएस्ट वाइब्रेशन बॉल, ये सीन मेरे अच्छे के लिए नहीं है, ये सीन मेरे कल्याण के लिए आया है। रेडी हैं बोलने के लिए ऐसा? अब आंख बंद करो, अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन देखो और उसके प्रति अपनी थॉट को क्रिएट कर लो। सभी जो पीछे से आ रहे हैं ना, आप वहीं बैठ जाएंगे, आप पूरा चल के सामने से नहीं आएंगे, आप वहीं बैठ जाओ और उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, पीछे से, पीछे के दरवाजे को लॉक कर दीजिए। आप सब आगे देखिए, आपका रोल पीछे नहीं था। क्लोज योर आईज, सिचुएशन को सामने लेकर आइए, चाहे वो सिचुएशन आपके जीवन में है, चाहे वो सिचुएशन आपके बच्चों के जीवन में है, दुआ दीजिए, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। जो हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। मन कहेगा इसमें कोई कल्याण नहीं है, मन को कहना ये मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, समझाते जाओ उसको। और जैसे ही हम ये कह रहे हैं, हम ऊपर बात नीचे, हाईएस्ट कर्मा वाइब्रेशन बॉल, ठीक है वापस आ जाए, क्या इसको हम फिक्स कर दें रूल ऑफ द गेम? जैसे ही गेम में कोई भी चीज आए सीन, हमें फर्स्ट लाइन कौन सी बोलनी है हमेशा याद रखना, सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? मैं। तो दो चीजों में, एक परिस्थिति में, एक व्यक्ति के व्यवहार में। शरीर को कुछ हुआ, शरीर को कुछ हुआ, फर्स्ट थॉट ये नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, नहीं ये भी मेरे कल्याण के लिए आया, ये मुझे राइट लाइफस्टाइल सिखाएगा। अभी कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू करना ही होता है, दुखी होकर करना है या खुश रहकर करना है ये डिसाइड करना, क्योंकि डेस्टिनी शरीर की नहीं, डेस्टिनी आत्मा की है। परमात्मा तो हमें रोज ये सिखाते हैं कि जिस दिन शरीर भी छोड़ोगे तो कैसे छोड़ना, कैसे छोड़ना, ये हमारी प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस करते हैं रोज ये कि जब मरना है तो भी कैसे मरना है, क्योंकि मरना मतलब शरीर छोड़ना है, हमने तो मरना नहीं है तो कैसे छोड़ना है, कैसे जाना है, बोलो एक चीज वर्ड बताइए कैसे जाना है, खुशी से। कौन कौन रेडी है खुशी से शरीर छोड़ने के लिए? वाह वेरी गुड। तो दो चीजें याद रखनी होंगी, एक खुशी से छोड़ना है और दूसरा कोई और छोड़ रहा है तो उसको दुआओं के साथ भेजना है। खुशी मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता, खुशी मतलब स्थिरता, दर्द नहीं, दुख नहीं। कर्मों का हिसाब किताब क्लियर्ड है, प्यार से जाना है, प्यार से जाना है, दुआओं के साथ जाना है। ठीक है इसको याद रखेंगे कैसे हमने जाना है, पर जाएंगे हम वैसे ही जैसे हम जिएंगे। इसीलिए हर क्षण ऐसा जिए कि अभी जाना पड़े तो भी कैसे जाएंगे, खुशी से, कोई रस्सियां खींचेंगी नहीं। दूसरी चीज आज क्या सेटल करना है, अपना कार्मिक अकाउंट किसी आत्मा के साथ, किसी के भी प्रति कुछ पकड़ के नहीं रखना। याद रखना हर अगली मीटिंग ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, आपको दिख रहा है दुनिया में ज्यादा बातें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। फिर हम कहते हैं कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, सब कुछ कर्मों के हिसाब किताब से हो रहा है सब कुछ। इसलिए मुझे अटेंशन अपने कर्मों पर रखना है। तो क्षमा कीजिए, इवन अगर आपको लग रहा है जो कि राइट होगा कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है। किस किस को लगता है मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, आपके जीवन में कोई है जो आपके साथ गलत कर रहा है? तो फर्स्ट आंसर, क्यों वो गलत कर रहे हैं, फिर से आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। अब उनको एक शरीर रोल रिश्ते के रूप में नहीं, आत्मा, मैं आत्मा वो आत्मा, ये हिसाब किताब हम दोनों के बीच है। अब उनको सामने देखिए जो आपके साथ अभी गलत कर रहे हैं और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगिए, उनसे क्षमा मांगिए। किससे क्षमा मांग रहे हम, किससे क्षमा मांग रहे हम जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं? किस बात की हम क्षमा मांग रहे हैं जो हम पहले कभी ना कभी कुछ करके आए थे? अभी हमने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन हम कभी ना कभी कुछ करके आए थे जिसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। फिर उनको क्षमा कीजिए उसके लिए जो वो अभी कर रहे हैं। तो पहला संकल्प क्षमा मांगना, दूसरा संकल्प क्षमा करना, तीसरा संकल्प बीती सो बीती, बात खत्म हुई, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। तीसरा, कर्मों का हिसाब किताब परिवर्तन करते हैं आज। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, पांच छह संकल्प सेट करने हैं सिर्फ। पहला संकल्प, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। दूसरा, मैं आपको क्षमा करती हूं। तीसरा, पुराना हिसाब किताब खत्म, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। चौथा, आज से हम एक नया हिसाब किताब शुरू करते हैं, मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। पांच संकल्प, ये पांच संकल्प आप रोज करिए, रोज रात को सोने से पहले कर दीजिए, सुबह एक बार कर दीजिए। ये पांच संकल्प आपसे वो एनर्जी है जो जा रहे हैं उनकी तरफ। बहुत जल्दी आपके मन चित से वो घाव जो होगा वो क्या होता जाएगा, फिनिश्ड। कोई घाव लेकर ना जीना है, ना कोई घाव लेकर आगे जाना है। चाहे गलती किसी की भी हो, दवाई लगाकर घाव तो मुझे ही अपना ठीक करना है। होना है या ऐसा नहीं होना? आप रोड पर सही रास्ते पे चल रहे थे, गलती किसी और की थी, आपको चोट लगी, लेकिन दवा तो खुद को ही लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? उन्होंने चोट मारी तो हम चोट को पकड़ के रखेंगे? नहीं, गलती किसी की भी हो, दवा हमें लगानी है। मुझे घाव के साथ नहीं जीना है। घाव के साथ जिएंगे उसका असर शरीर पर पड़ता है। इसीलिए मन में पुरानी 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 एकदम बचपन की भी कोई बात होगी ना, उसको भी साफ करना, तभी लाइट जी सकेंगे और तभी लाइट जाएंगे। हो गया क्लियर? इजी? ये थॉट्स को रोज रिपीट करना। एक और इक्वेशन हमेशा याद रखना है और वो है संकल्प से सिद्धि। लिख लीजिए, संकल्प से सिद्धि। सिद्धि मतलब वो रियलिटी बन जाएगी, डेस्टिनी बन जाएगी। सो थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। संकल्प से सिद्धि एक बहुत बड़ी पावर है। ये पावर हमें सिखाती है कि जो आप सिद्धि देखना चाहते हैं, जो आप अपने भाग्य में देखना चाहते हैं, आप बस वही संकल्प करो, मतलब वही वाला बॉल फेंको। कल से हम देख रहे हैं, यहां आने से पहले हम कहते थे आई एम स्ट्रेस्ड, कल से हम क्या बोल रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। अभी हैप्पी हुए नहीं है, अभी पीसफुल पूरा हुए नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना शुरू किया है, हमने बोलना शुरू किया है। मतलब हमने अपनी बॉल का कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हम हाईएस्ट वाइब्रेशन बॉल फेंकना शुरू किया है। संकल्प से सिद्धि का मीनिंग है, कोई भी संकल्प आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार मतलब सिर्फ वो ही संकल्प बोलेंगे, उसका ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, तो वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो संकल्प पॉजिटिव है या नेगेटिव है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है, आप पॉजिटिव करो वो सिद्ध हो जाएगा, आप नेगेटिव करो वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अब अपना हाथ ऐसे पकड़िए और इसमें अपने जीवन की कोई भी एक प्रॉब्लम लेकर आ जाओ। अच्छा चलो प्रॉब्लम छोड़ो, आप शाम को बहुत काम करके घर पहुंचे, थके हुए हैं, शरीर थका हुआ है, मन भी थका हुआ है, 50% थका हुआ है, 50% पे पकड़ो। फिर आप घर आए और आपने बोलना शुरू किया, मैं बहुत थका हुआ हूं, चाय दो मुझे, मैं बहुत थका हुआ हूं। आसपास भी सब बोलने लगते, उनको तंग मत करो, वो बहुत थके हुए हैं। तो बहुत जल्दी सब लोग क्या बोलने लगते, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। 50% थके हुए थे इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। लेकिन जब सबने संकल्प किया बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, तो क्या हो जाएगा? नहीं, 100 नहीं जाएगा, लेकिन 50 से वो 55 जरूर हो जाएगा। आप बोलते जाओ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो वो शरीर कैसा फील होने लगेगा, और बीमार होने लगेगा। अब यही आप उसको 50 पर पकड़ो, आप बोल रहे थे हम बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, कुछ काम नहीं करते, बैठ गए। उतनी देर में कोई आया और उसने कहा, पता है क्या, मेरे पास नई वाली पिक्चर की टिकट है, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी वो थकावट कहां गई सारी, संकल्प, संकल्प। अब 50 से थके हुए थके हुए थके हुए रिपीट करके हमने उसको 50 से 60 ले गए। अगर मेरा मन मेरी प्रॉब्लम को 50 से 60 पर लेकर जा सकता है, तो मेरा मन मेरी प्रॉब्लम को 50 से 40 पर भी ला सकता होगा। तो उसके लिए मुझे क्या बोलना चाहिए? हम बहुत थके हुए बोल के हम उसको 60 पर ले गए, हम क्या बोलेंगे जिससे हम उसको 40 पर ले आएंगे? नहीं, शरीर थका हुआ है, उसके लिए बोलना पड़ेगा आई एम पावरफुल, डिफरेंट। मेरा शरीर थका हुआ है, क्या बोलूं? मेरा शरीर बीमार है, उसके लिए क्या बोलूं? सिंपल सिद्धांत है, जो झूठ है वो बोलना है ना। सच क्या है? अभी बीमार है, लेकिन बीमार है बीमार है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बीमारी और बढ़ जाएगी। चाहते क्या है, मतलब सिद्धि क्या चाहिए? कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हम उसको किस भाषा में बोलते हैं? मुझे मुझे ठीक होना चाहिए, होना चाहिए बोलेंगे तो वो होना चाहिए ही हो जाएगा। हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम क्या कहते हैं? हम बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब ऑलरेडी हूं, सो दैट बिकम्स द संकल्प। इसकी भाषा को सीख लीजिए, बहुत सिंपल है, इतनी इजी है कि छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। और जल्दी से फिर ये भाषा हमारी कुछ परिस्थितियों में हम यूज करते हैं और फिर थोड़े दिन रोज मुरली और सुनकर योग करके ये हमारी नॉर्मल भाषा बन जाती है। तो भाषा में क्या करना है? जो देखना चाहते हैं वो आपको बोलना है, ये ऑलरेडी है, इसलिए परिस्थिति आई और हमने क्या संकल्प किया? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। और अगर हम उस संकल्प को अगले कई दिनों तक पकड़ के रखेंगे, सबसे पहले तो वेस्ट थॉट्स आएंगे नहीं, तो वो मेरा सबसे पहला कल्याण हो जाता है। और दूसरा, संकल्प इतनी बार रिपीट करेंगे तो सिद्धि तो होगी ही, आई तो प्रॉब्लम थी लेकिन वो भी हमारा कल्याण करके चली जाती है, क्योंकि हमने उसको वो संकल्प दिया कि ये मेरे कल्याण के लिए आई है। इसको हम जीवन में किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी। मिरेकल्स क्रिएट होंगे लाइफ में इससे, लेकिन वो मिरेकल नहीं है, वो जस्ट पावर ऑफ द माइंड है। हम साइंस की पावर यूज करते हैं, हम पैसे की पावर यूज करते हैं, हम शरीर की शक्ति की भी पावर यूज करते हैं, अब हमें आत्मा की शक्ति की पावर यूज करनी है। आत्मिक शक्ति की मैजिक क्या है? तो इसलिए जीवन की कोई भी परिस्थिति, और ये आप अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा यूज करें। अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के उनके संस्कार होते हैं। जो संस्कार दिख रहा है उसको बार बार नहीं दोहराना, जो संस्कार देखना चाहते हैं उसको दोहराना। आपने सबने अपने आसपास देखा होगा, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उस माता पिता ने उस कमजोरी को अपने मन में स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने बच्चे को क्या कहा? ये बच्चा कैसा है मेरा? क्या कहा? मैंने कहा ये तो परफेक्ट है, ये तो पावरफुल है, ये तो परफेक्ट है, ये तो मेरा बहादुर बच्चा है। होता है ना ऐसे? और बहादुर बोल के बोल के बोल के उस बच्चे को कैसा बना देते हैं? संकल्प से सिद्धि, वही तो है संकल्प से सिद्धि। लेकिन ये संकल्प से सिद्धि हम हर चीज में यूज कर सकते हैं। संस्कारों के लिए यूज करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए यूज करते हैं, काम कारोबार में यूज करते हैं और रिश्तों में तो बहुत सारा यूज करते हैं। अब अगर मेरी किसी से नहीं बनती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा संकल्प क्या होता है? पता नहीं, हम कितना भी कोशिश करें ना, हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है रिश्तों में। अब ये संकल्प बोलेंगे, अब बताएं, अब आप आंसर करते जाओ, ये संकल्प बोलेंगे तो क्या होता जाएगा? गड़बड़ बढ़ती जाएगी। तो मुझे क्या संकल्प बोलना चाहिए जिससे रिश्ते ठीक होने लगे? बोलिए, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। अब आप बोल लेंगे ना ये झूठ? कुछ लोग बोलते हैं झूठ क्यों हमने बोलना है? झूठ नहीं है, ये लॉ है, ये भारत की संस्कृति में हजारों साल से लोगों को पता है, इसीलिए वो मन की शक्ति से इतने बड़े बड़े काम कर लेते थे। आज हम धीरे 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 सिर्फ विज्ञान की शक्ति को यूज करते हैं, मन की शक्ति को यूज नहीं करते हैं। संकल्प एक वाइब्रेशन है, वो क्रिएट होता है, वो रेडिएट होता है, वो कर्मा बॉल है जो जाता जाता है जाता जाता है। वेस्ट में उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मैनिफेस्ट बिकम्स अ रियलिटी। लेकिन वो लिया कहां से? संकल्प से सिद्धि, हजारों साल से अपने पास है वो। ठीक है, बच्चे कहना नहीं मानते, अब मैं संकल्प देते जाऊंगी, आप चेंज करते जाना उसको। बच्चे कहना नहीं मानते, थोड़ा सा ऐड करो, बच्चे हर कहना मानते हैं। यू कैन टेक इट एज हाई एज यू वॉन्ट। बच्चे खाना नहीं खाते, ऐसे नहीं बोलना है सिर्फ खाना खाते हैं, आपको बोलना है बच्चे जो उनके लिए हेल्दी है सिर्फ वो ही खाते हैं। पावर आई है ना आपके पास, उस पावर को ठीक से यूज करना होता है। मेरी इनके साथ बिल्कुल नहीं बनती, मेरे इनके साथ बहुत अच्छी बनती है। पता नहीं मेरे शरीर में बार बार कुछ होता रहता है, कभी कुछ करो तो कभी कुछ। मेरा शरीर तो परफेक्ट हेल्दी है। इजी इजी, कितनी भी मेहनत करो रिजल्ट ही नहीं मिलते। बार बार वही प्रॉब्लम आई जा रही है। प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं करनी संकल्प के अंदर, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना, लोअर एनर्जी वर्ड यूज नहीं करना, नॉट यूज नहीं करना, विल हैपन यूज नहीं करना, होप इट हैपन्स नहीं यूज करना, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये वोकैबुलरी है, आई एम, वो हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब अपने जीवन की कोई भी बात हो उसका संकल्प यहां आज जाने से पहले लिख के जाना, अपनी छोटी सी लिस्ट बनाकर जाना, अपने संस्कारों के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए, किसी के साथ भी गांठें आई हो या उनके नाम से संकल्प बनाना कि इनकी मेरी बहुत अच्छी बनती है, परफेक्ट रिश्ता है हमारा, परफेक्ट रिश्ता है। सफलता मुझे चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसे कैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं ना, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, मेरे साथ बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। पता नहीं मेरे बच्चों का आगे क्या होगा, परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। अपने माइंड को काउंटर करते जाओ, जैसे किसी और को काउंटर करते हैं ना, कोई ऐसे बोलता है पता नहीं आगे क्या होगा, बोलो बढ़िया के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे दूसरे को करते हैं, हमें किसको काउंटर करना है, अपने को काउंटर करना है। तो कुछ संकल्प अभी लिख लेते हैं जिसको आप अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना लेंगे। इसमें अब आप और अपने अपने डालेंगे, डिपेंड्स ऑन आपको क्या सिद्धि लानी है। भाषा इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है, फिर आप कोई भी मिरेकल क्रिएट करेंगे। और सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, औरों के लिए क्रिएट करेंगे। किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में बार बार कम आ रहे हैं, तो वो बच्चा क्या बोलता है, मेरे लिए ना यही सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। वो बोल बोल के उस सब्जेक्ट को क्या कर देता है, और मुश्किल हो जाता है। उसको क्या बोलना होगा, सबसे पहले उसको बोलना होगा ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे पहली लाइन, उस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, ये तो मेरे लिए बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर से शरीर का इलाज नहीं करवाना है, इसका जस्ट मतलब है कि आउटर पावर के साथ अगर माइंड की पावर, दोनों पावर यूज कर ली तब मिरेकल होते हैं। तो वो वाली पावर को यूज करना है। जो बच्चे आते हैं सेंटर पर भी आते हैं, वो संकल्प से सिद्धि सीखते हैं, तो वो एक साल पहले से ही अपना संकल्प बना लेते हैं कि इस साल मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं, मैं अगले साल कौन से कॉलेज में होऊंगा या कौन सी यूनिवर्सिटी में होऊंगा। वो एक साल पहले से उसको अपना संकल्प बनाते हैं और वो पूरा साल वो संकल्पों को रिपीट करते हैं। और अभी तक जितने लोगों को हम जानते हैं उन सबके संकल्प सिद्ध हुए हैं, बिकॉज दिस इज अ लॉ विच ऑलवेज वर्क्स। ये एक लॉ है, ये हमेशा काम करता है, सबके साथ काम करता है, सिर्फ उस व्यक्ति को उसको विधि से करना है। बस जिसने विधि से किया उसको सिद्धि मिलनी ही है। तो बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के इलाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी पैरामीटर नॉर्मल नहीं है, हम बोलते रहते हैं मेरा बीपी हाई है, मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने बोला है मुझे जीवन भर ये दवाई लेनी पड़ेगी, करते जाओ संकल्प, करते जाओ। वो प्यार से रहेगी बीमारी साथ साथ, क्या संकल्प करेंगे? अगर अभी बीपी हाई है तो क्या संकल्प करेंगे, क्या क्या संकल्प करेंगे? लो नहीं करना, संकल्प ध्यान से करने होते हैं। फिर बोलेंगे मेरा लो कैसे हो गया, बट लो बोलेंगे तो लो ही होगा। इसीलिए संकल्प ध्यान से करना है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, कभी नहीं बोलना आई एम डायबिटिक। पहली बात तो आई एम नॉट डायबिटिक, शरीर इज डायबिटिक, नॉट आई। आई एम आत्मा, आई को डायबिटिक नहीं बोलना कभी। आई हैव दिस बीमारी, नो आई डोंट हैव एनी बीमारी। सबसे पहले ये डिटैचमेंट भी आधा प्रॉब्लम ठीक कर देती है, मेरे शरीर को हुआ है, मुझे नहीं, मुझे नहीं। तो सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। कोविड के बाद हवा में बहुत डर फैल चुका है, उस डर का असर हम पर नहीं होना चाहिए। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। पांचवा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, देने वाली आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आप अपने लिए ब्लैंक रखें, कोई भी अपने संस्कार को चेंज करने के लिए। किसी के पास आदत होती है कि वो अपने काम को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे, बाद में करेंगे, अपने ही संस्कार से थक जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मैं अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेट पूरा करता हूं। बस थोड़े दिन करो, संस्कार चेंज। मैं हर जगह समय से पहले पहुंच जाता हूं, लेट होने की आदत चेंज। तो ऐसे एक संकल्प अपने लिए लिखेंगे, फिर शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज। फिर एक संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे रिश्ते सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, माई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। फिर एक संकल्प अपने करियर के लिए, वो आपको लिखना है, जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल है, उसको आपको एक ब्लेसिंग बनाकर लिखना है। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड, फिल इन द ब्लैंक। मैं ये बन चुका हूं, मैं ये पा चुका हूं, मैं ये कमा चुका हूं, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। एंड आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Envelop yourself with the highest vibration thought. परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें इसको, व्हाइट लाइट एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ। इसमें लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस नहीं जाती किसी की भी। अब ये ऐसे आप 8-10 संकल्प, इसमें कोई भी आपके जीवन की परिस्थिति है उसका संकल्प आप ऐड कर दीजिए। संकल्पों को रोज रोज चेंज नहीं करना है, हमने एक सेट बनाना है और अगले कुछ महीनों तक यही करना है, तब वो सिद्धि आएगी। वो बार बार करने से सिद्धि आती है, सिर्फ एक बार बोलने से नहीं। अब इसको करना कब है, सबसे पहली चीज रात को सोने से पहले एक छोटी सी डायरी अपने पिलो के पास रख लीजिए। बेस्ट चीज होती है रात को सोने से पहले लिखना, लिखना, क्योंकि रात तक माइंड पे बहुत सारी थॉट्स होती हैं। इसको लिख लीजिए सोने से पहले। सोने से पहले फोन, टीवी, कल हमने देखा सबसे पावरफुल फोल्डर हमारे एनवायरमेंट में कौन सा आ गया है, हमारा फोन। ब्रह्मा कुमारीज में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं डिजिटल वेलनेस, जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए किया जा रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से भाई बने आकर आपके टीचर्स को सिखाएंगे, आपके टीचर्स आगे आपके स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो उसको अगर आप वेबसाइट पे देखें, इट इज digitalwellness.in, और आप सुमन दीदी से बात करें तो वो आपको और डिटेल्स दे देंगे। आप भी इसको अपने कॉलेज और स्कूल के लिए कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट बन जाएगी, क्योंकि वो ही उनकी संस्कारों पर भी असर कर रही है और उनकी पढ़ाई पर भी असर कर रहे हैं, उनके शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है तो सबसे पहले इस चीज को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो रात को सोने से पहले क्राइम, थ्रिलर, वायलेंस ऐसा कंज्यूम करके सो जाते हैं, तो नींद में वो सारे जो कंटेंट है वो वर्क करता है, तो फियर एंड एंग्जाइटी नॉर्मल हो जाता है। तो रात को सोने से पहले सुबह उठते ही फर्स्ट संकल्प, दोनों टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और जब आप यहां से वापस जाएंगे, आप सेंटर जाएंगे, मेडिटेशन सीखेंगे और मुरली क्लास जरूर जाएंगे, तब ये वाइब्रेशन और ऊपर जाएगी। तो सुबह और रात, एंड तीसरी चीज भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसको ये पावर है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर हम में से कोई भी शाकाहारी भोजन नहीं करता है, तामसिक भोजन भी करता है, 3 महीने के लिए करके देखें, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉर 3 मंथ्स, नॉन वेज में दर्द है, दुख है, हिंसा है, डर है, हेल्पलेसनेस है, फियर है, फिर वायलेंस है, फिर मृत्यु है। ये खाना कभी किसी को हेल्थ नहीं दे सकता है। ये प्रोटीन विटामिन दे सकता है लेकिन हेल्थ नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी फंडामेंटल एनर्जी डेथ है। डेथ विल नॉट गिव हेल्थ। एंड वो सिर्फ डेथ नहीं है, फियर, एंगर, अग्रेशन, हर्ट, पेन, फिर वायलेंस, फिर डेथ। नवरात्रों में नहीं खाते ना, नवरात्रों में नहीं खाते ना, इसका मतलब जब शक्ति का आह्वान कर रहे हैं तब नॉनवेज नहीं खाया जाता। सिंपल सिंपल। तो सिर्फ 9 दिन क्यों, सिर्फ 9 दिन क्यों दिव्यता और शक्ति चाहिए? तो 3 महीने करके देखना, 3 महीने के बाद अपने आप वो बिलीफ सिस्टम आपका ट्रुथ बन जाएगा। और दूसरी चीज, खाना खाने के टाइम नियम बना ले अपने घर में, नो स्क्रीन, नो टीवी, नो टीवी, नो फोन, नो स्क्रीन। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग सबके मन पर असर कर रही है, सबके शरीर पर असर कर रही है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो आपके खाने में शब्द जा रहे हैं, और जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है। रूल बना दीजिएगा अपने घर में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं देना अपने बच्चों को। 10-15 मिनट लगते हैं सिर्फ खाना खाने में, लेकिन पहले हम फॉलो करेंगे उस रूल को। एंड लास्ट, खाना खाने के टाइम हम अपने संकल्पों को दोहराएंगे, और खाना बनाने के समय आप हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई में चला के रखें, परमात्मा के याद के भजन, गीत, जो आपके घर में परिवार को अच्छा लगे। आपको सिंपल ओम ध्वनि चलानी है, आपको मन जो चलाना है, हाई एनर्जी वर्ड्स लेकिन रसोई में चलने चाहिए, हाई एनर्जी वर्ड्स। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है वैसे, यहां आप जो भोजन खा रहे हैं वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा वो सारा खाना एक प्लेट में लेके जाते हैं और उसको मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट उसके साथ, फिर वो खाना आपके खाने में मिक्स होता है, फिर वो आपको मिलता है, वो प्रसाद होता है। पर ऐसा सिर्फ आश्रम में नहीं होता, सब जो भाई बहने घर पे रहते हैं वो भी इस नियम को घर पे सेम फॉलो करते हैं। तो मेडिटेशन, सुबह की मुरली क्लास और भोजन जो मेडिटेशन की स्थिति में बनता है, ये 3 चीजें आ जाती हैं तो स्थिति क्या होने लगती है, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर अच्छे संस्कार और कर्म बनना बहुत सहज हो जाए, बहुत सहज। और फिर आप आगे सीखेंगे कल में कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सृष्टि एक परिवर्तन के समय से गुजर रही है। कलयुग फिनिश की तरफ है, उससे पहले सत्युग स्टार्ट करना है। स्वर्णिम भारत आना है नहीं आना, कौन कौन मानता है स्वर्णिम भारत आना है? तो आना है या लाना है? लाना है, आएगा नहीं अपने आप, लाना है। कैसे लाना है, कैसे लाना है? बस अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे, देश की वाइब्रेशन और दुनिया की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, आप साइलेंस में बैठेंगे, बहन आकर आगे का प्रोग्राम सुनाएंगी और उस साइलेंस में आप अपने कार्मिक अकाउंट चेक करके जिस कार्मिक अकाउंट के लिए कोई संकल्प लिखना है वो अभी डायरी में लिख लीजिएगा। साइलेंस में रहेंगे अगले एक मिनट, बिल्कुल साइलेंस।